blessed Savior. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shrutatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Loe Sauvasahunam. Nittaviyattakamam. Viram nami unapatta sauvattam anubhagasa vihattim jahovai samparu vemo. Yeh Shri Virsen Acharya Rachi Jaydeula Tika hai, jo Kashaya Pahur Tata Churni Sutra granthon par likhi hui hai, jinke karta hai Gunadhar Bhattarak Tata Yatiyushav Acharya, jinhone Bhagwan Mahavir ke updesh ke anusar in granthon ki रचना की है। पांचवी पुस्तक जो अभी हम पृष्ठ संख्या 9 पर आ गए हैं, 9। हमने घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा देखी। अब सर्व विभक्ति 9 सर्व विभक्ति की अपेक्षा यह बात चलेगी। ये 12 नंबर का जो पॉइंट है पैराग्राफ, वहां से पढ़ेंगे। सर्व विभक्ति और नौ सर्व विभक्ति की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ की अपेक्षा मौनीय कर्म के सब स्पर्धक सर्व विभक्ति है, जहां सभी स्पर्धक पाए जाएंगे उसको सर्व विभक्ति कहेंगे, और उनसे न्यून यानी कम स्पर्धक उसको नौ सर्व विभक्ति कहेंगे। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा पर्यंत ले जाना चाहिए, सभी मार्गणाओं में ऐसा ही समझना। विशेषार्थ, सर्व विभक्ति से आशय है सब भेद प्रभेद, अनुभागों के सभी भेद जहां हो उसको सर्व विभक्ति कहेंगे, अर्थात सब भेद प्रभेदों के समूह को सर्व विभक्ति कहते हैं, यानी उत्कृष्ट से लेकर जघन्य तक जहाँ सभी पॉसिबल है उसको सर्व विभक्ति कहेंगे, और उन समूह में से यदि एक भी भेद कम हो तो उसे नौ सर्व विभक्ति कहते हैं। अतः मौनी के जितने स्पर्धक है उनका समूह सर्व विभक्ति कहा जाता है, और उस समूह में से यदि एक भी स्पर्धक कम हो तो उसे नौ सर्व विभक्ति कहते हैं। सारांश है कि सर्व विभक्ति केवल सब स्पर्धकों का समूह ही है, और उस समूह से कम स्पर्धक नौ सर्व विभक्ति है। सब मार्गणाओं में सर्व विभक्ति और नौ सर्व विभक्ति का यही क्रम समझना चाहिए।
स्पर्धक के वो सभी निश्चय की अपेक्षा लेते हैं कि
निश्चय नहीं, देखो स्पर्धक में हमेशा अनुभाग लेना है। हाँ। वो सभी निषेकों में हो गए, प्रत्येक निषेक में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जो कोई स्पर्धक पाए जाएंगे, जितने कोई हो जिसमें जो जो हो उसकी बात है, जो पॉसिबिलिटी है वो, तो हर एक निषेक में अलग अलग अनुभाग वाले परमाणु पाए जाएंगे।
पर उत्कृष्ट अनुभाग वाले स्पर्धक तो उत्कृष्ट स्थिति वाले स्पर्धक
नहीं होंगे। उत्कृष्ट स्थिति में उत्कृष्ट अनुभाग होता है, ये बात गलत है। क्यों? हमने जब हम स्पर्धकों की बात है, हम राउंड 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 दिखाते हैं, तब अंतिम स्पर्धक में मैक्सिमम अनुभाग है, अंतिम निषेक में नहीं।
नहीं, अंत कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाले निषेक पड़े।
हाँ।
तो वहाँ पे उत्कृष्ट अनुभाग वाले स्पर्धक भी होंगे? नहीं होंगे,
सभी जगह होंगे उत्कृष्ट अनुभाग वाले। देखो, आपको प्रस्तावना हमने देखी थी, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का उसकी उत्कृष्ट स्थिति किसके होती है? सम्यक्त ग्रहण के पहले समय में। हाँ। स्थिति की बात है। अब उत्कृष्ट अनुभाग किसको होगा यदि हम विचार करेंगे तो जिसके जिसके मोनी की सत्ता है, यानी सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है,
शुक्ल में दो ही स्थिति विभक्ति वाले स्पर्धक है, मीन्स स्थिति नहीं अनुभाग के स्पर्धक है, वो द्विस्थानक है, तो वहाँ पे उत्कृष्ट स्थिति वाले नहीं हो सकते है।
हाँ, वो कभी नहीं हो सकते, उसकी बात करेंगे। यहाँ तो सर्व विभक्ति का अर्थ देख रहे हैं, वो किसके होती है नहीं होती उसकी चर्चा यहाँ नहीं, वो स्वामित्व में देखेंगे। सर्व विभक्ति किसको कहना, जहाँ उत्कृष्ट से लेकर जघन्य अनुभाग वाले सभी स्पर्धक पाए जाएंगे उसको सर्व विभक्ति कहेंगे, जहाँ एक भी स्पर्धक कम हो तो नो सर्व विभक्ति कहेंगे।
लता दारू अस्थि और शैल
चतुस्थानिक जो है, चतुस्थानिक सभी, यानी मिनिमम से लेकर उत्कृष्ट तक, मैक्सिमम तक, उसको कहेंगे सर्व स्पर्धक, यानी सर्व विभक्ति। अविभाग प्रतिच्छेद यानी एक एक अंश की बात है, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद। हाँ, आपका प्रश्न ऐसा है कि एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ने वाले सभी स्पर्धक होने चाहिए। एक एक स्पर्धक में तो अनंत वर्गणा होती है जो एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ने वाली होती है, और ऐसे सभी स्पर्धक जहाँ होंगे उसको सर्व विभक्ति कहेंगे। अभी अपना इसका अर्थ केवल देख रहे, उस शब्द का अर्थ क्या है, वो होता है कि नहीं होता, किसके होता है, कब नहीं होता, वो सब बातें आगे चलेंगे। हाँ, 23 संयोग सभी आएगी ना, एक जीव की अपेक्षा अनेक जीव के, सभी बातें बहुत विस्तार से आने वाली है। अब हम 10 पृष्ठ पर आ गए, नंबर 10, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ की अपेक्षा मौनीय कर्म का सर्वोत्कृष्ट अनुभाग उत्कृष्ट विभक्ति है। मौनीय में जो मैक्सिमम पॉसिबल अनुभाग है उसको उत्कृष्ट विभक्ति कहे। सर्व में उत्कृष्ट लेकर, उत्कृष्ट से लेकर जगड़े तक सभी पाए जाएंगे उसको हम सर्व विभक्ति कहेंगे, और उत्कृष्ट में जो मैक्सिमम अनुभाग है उसको उत्कृष्ट विभक्ति कहेंगे, और उससे न्यून अनुभाग वो उत्कृष्ट वाला नहीं होगा तो उससे थोड़ा भी कम है तो हम क्या कहेंगे उसको, अनुत्कृष्ट विभक्ति कहेंगे। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए, क्योंकि आदेश उत्कृष्ट अनुभाग सब जगह संभव है। इसका अर्थ क्या है, आदेश उत्कृष्ट अनुभाग सब जगह संभव है, आदेश यानी मार्गणा, परंतु सब जगह संभव है का अर्थ क्या है,
सभी मार्गणा में,
क्या सभी मार्गणाओं में उत्कृष्ट होगा। हाँ, उसका अपना उत्कृष्ट, जैसे नरक में कितना उत्कृष्ट हो सकता है, या एकेंद्रियों में कितना उत्कृष्ट हो सकता है, या कोई भी मार्गणा अभी जो सम्यक दृष्टि है उसमें उत्कृष्ट कितना हो सकता है, उसको अपनी अपनी मार्गणाओं में जो उत्कृष्ट होगा उसको उस मार्गणा की अपेक्षा उत्कृष्ट कहेंगे, आदेश उत्कृष्ट कहते हैं उसको। सब जगह होगा ना अपना अपना उत्कृष्ट, अपना अपना जघन्य, क्योंकि हम देखते हैं सम्यक दृष्टि है तो उसकी चतुस्थानिक होता ही नहीं, द्विस्थानिक ही है, और द्विस्थानिक में जो मैक्सिमम है उसको उसका उत्कृष्ट कहेंगे। ये किसके होगा वो बात अभी नहीं सोचनी, वो स्वामित्व में देखेंगे। अब 14 नंबर, जघन्य अनुभाग विभक्ति और अजघन्य अनुभाग विभक्ति। देखो हम अधिकार देख रहे थे ना, ये तो इसमें अभी ये 6 और 7 नंबर का है ना, 3 पृष्ठ से हमने देखा था। तीन नंबर का पृष्ठ में देख लेना, 3 नंबर का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य, 6 और 7 नंबर देखे हमने। तो जघन्य अनुभाग विभक्ति और अजघन्य अनुभाग विभक्ति की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ की अपेक्षा मौनीय कर्म का सबसे जघन्य अनुभाग जघन्य विभक्ति है, वो कहा है किसके, ये यहाँ सवाल नहीं अपना, वो 10वें के अंत में होगा, वो तो बाद हम जान रहे इसलिए, परंतु उसको जघन्य कहेंगे। और उसके ऊपर के अनुभाग अजघन्य विभक्ति है, ऊपर के सभी उससे थोड़ा भी ज़्यादा है या उत्कृष्ट तक के सभी जो विकल्प है उसको अजघन्य कहेंगे। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा पर्यंत ले जाना चाहिए, क्योंकि आदेश जघन्य अनुभाग सब जगह संभव है। ओघ का जघन्य तो सूक्ष्म सांप्राय के अंत में है, परंतु आदेश जघन्य जिसको कहेंगे, जैसे एकेंद्र का अपना जघन्य अलग होगा, पंचेंद्रियों में अपना जघन्य अलग होगा, या कोई सम्यक तो मार्गणाएं, मिथ्या दृष्टि की मार्गणाएं, उसमें हर एक में अपना अपना जघन्य अलग होगा। विशेषार्थ, यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का विचार करते समय आदेश उत्कृष्ट की और जघन्य अजघन्य अनुभाग विभक्ति का विचार करते समय आदेश जघन्य की संभावना प्रकट की है, सो उसका यही अभिप्राय है कि यानी आदेश उत्कृष्ट और आदेश जघन्य हो सकता है, ये जो बताया है उसका अर्थ ऐसा है कि जिन मार्गणाओं में ओघ उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति और ओघ जघन्य अनुभाग विभक्ति संभव नहीं है, यानी मार्गणा कुछ है परंतु जो ओग वाला उत्कृष्ट है वो तो वहां नहीं पाया जाता। जैसे सम्य दृष्टि है, ओग का उत्कृष्ट तो कौन सा वाला है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जब उत्कृष्ट अनुभाग बंद करेगा तब, वो सम्य दृष्टि के नहीं होता है। यानी सम्यक स्व संबंधी जो मार्गणा है उसमें तो ओग वाला उत्कृष्ट नहीं संभव। वहां जो सबसे उत्कृष्ट अनुभाग हो, अब सम्यक दृष्टियों में किसके उत्कृष्ट अनुभाग होगा जो हम देखेंगे बाद में, अन्य अन्य जो सम्यक दृष्टि उसमें उत्कृष्ट किसको होगा, उसे आदेश उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति, और जो सबसे कम अनुभाग हो उसे आदेश जघन्य अनुभाग विभक्ति जानना चाहिए। अभी उसका उदाहरण देते हैं। उदाहरण स्वरूप आभिनिबोधिक ज्ञान में एक स्थानिक और द्विस्थानिक ये दो प्रकार की अनुभाग विभक्ति ही संभव है। आभिनिबोधिक ज्ञानियों में एक स्थानिक भी होगा जो क्षपक श्रेणी में होगा और द्विस्थानिक भी, इसलिए यहाँ उत्कृष्ट से आदेश उत्कृष्ट द्विस्थानिक अनुभाग विभक्ति ली गई है। द्विस्थानिक में भी जो मैक्सिमम वाली है उसको आदेश की अपेक्षा वहां उत्कृष्ट कहेंगे, तथा सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य अनुभाग विभक्ति भी द्विस्थानिक संभव है। क्यों? वहां क्षपणा नहीं है, तो दसवें गुणस्थान में वो तो ये क्षपक श्रेणी में अपगत वेद होने पर ये एक स्थानीय हो जाती है, इसलिए वहां जघन्य से आदेश जघन्य अनुभाग विभक्ति ली गई है। इसी प्रकार सर्वत्र जहां जो संभव हो उसे घटित कर लेना चाहिए। इसका अर्थ ख्याल में आए बात? उस विशिष्ट मार्गणा में उत्कृष्ट कितना हो सकता है, जघन्य कितना हो सकता है। इन जनरल उत्कृष्ट जघन्य की बात तो ओघ में कहेंगे, और अपने अपने मार्गणा का उत्कृष्ट और अपने अपने मार्गणा का जघन्य वो आदेश उत्कृष्ट और आदेश जघन्य कहेंगे। अब आगे की जो अनुयोग द्वारा देखेंगे, सादी अनुभाग विभक्ति, अनादि अनुभाग विभक्ति, ध्रुव अनुभाग विभक्ति और अध्रुव अनुभाग विभक्ति। आठ नंबर से लेना है ना, अभी देखो तीन नंबर पृष्ठ पर से हमने देखा था सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव, आठ नौ दस और ग्यारह। ये चार इसमें समझाएंगे। देखो सादी अनुभाग विभक्ति, अनादि अनुभाग विभक्ति, ध्रुव अनुभाग विभक्ति और अध्रुव अनुभाग विभक्ति की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ की अपेक्षा मौन्य कर्म की उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, क्या कह रहे देखो, ओघ में जो उत्कृष्ट है क्या अनादि से उत्कृष्ट चला आ रहा है? नहीं। कभी अनुत्कृष्ट कभी उत्कृष्ट, कभी अनुत्कृष्ट कभी उत्कृष्ट होगा। उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट भी क्या अनादि से है? नहीं, बीच बीच में उत्कृष्ट भी होता है। तो उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट होगा तो शादी कहेंगे, अनुत्कृष्ट के पश्चात उत्कृष्ट होगा तो भी शादी कहेंगे, तो वे दोनों ही शादी हो गए। अब और जघन्य अनुभाग विभक्ति, जघन्य कब होती है? ओग की अपेक्षा दसवें गुण स्थान के अंत समय में, यानी उसको भी आदि है। उसको जघन्य को तो कभी हुआ ही नहीं था अब तक, वो भी शादी है। तो उत्कृष्ट भी शादी है, अनुत्कृष्ट भी शादी है, और जघन्य भी शादी है। शादी क्यों? दसवां गुणस्थान अनादि का है कि अभी अभी हुआ है?
नहीं नहीं, वो तो एक बार हो जाएगा तो उस,
इसीलिए उसको शादी कह रहे। शान उसकी अंत की बात नहीं चल रही, आदि है कि नहीं उसके?
हाँ
आदि है। आदि है क्या अनादि है? आदि है। तो इसलिए ये तीनों जो है वो शादी है। अब अजघन्य में कौन आए? जघन्य को छोड़कर सब अजघन्य ही है। तो जिसके अभी शपक दसवां गुणस्थान हुआ ही नहीं है, उन सारे जीवों को अजघन्य ही है। कब से? अनादि से। तो ये तीन तो शादी है। तो कह देखो, ओग की अपेक्षा मुनि कर्म की उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य अनुभाग विभक्ति क्या शादी है क्या अनादि है? तो उसमें उत्तर आया शादी है। अब कहते हैं क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है? तो शादी है और अध्रुव है। अध्रुव क्यों? कायम नहीं है, है थी, इसलिए अध्रुव। अब अजघन्य की बात कर रहे हैं, अजघन्य अनुभाग विभक्ति क्या शादी है क्या अनादि है? क्या उत्तर होना चाहिए? अनादि का है, अजघन्य की बात है। और क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है? अब कहते हैं अनादि है, किसी के ध्रुव होगी किसी के अध्रुव होगी। अभव्यों में तो ये जघन्य कभी होने ही वाले नहीं है, तो उनमें ध्रुव कहेंगे, और भव्यों में अध्रुव कहेंगे। आदि हाँ, तो अनादि है, ध्रुव है और अध्रुव है। फिर से हमने पहले उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य देखे, वो शादी है और अध्रुव है, और जो अजघन्य है वो अनादि का है, ध्रुव भी है और अध्रुव भी है। अलग अलग जीवों की अपेक्षा ली वहां पर। ये तो ओग की अपेक्षा हो गए। अब आदेश यानी मार्गणाओं में आदेश की अपेक्षा नारकियों में मुनि कर्म की उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति क्या शादी है क्या अनादि है, क्या ध्रुव है अथवा क्या अध्रुव है। अब जब नारकियों की बात करेंगे तो नारकियों के लिए उत्कृष्ट और नारकियों के लिए जघन्य लेना। तो उसको सुनारकियों के लिए तो आदि है ना, मार्गणा की आदि होती है। तो कहते हैं सादी है और अध्रुव है, क्योंकि उसमें तो वेरिएशन होती रहेगी, क्योंकि ये तो नॉन रिवर्सिबल जघन्य होगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि पद परिवर्तन की अपेक्षा, पद परिवर्तन यानी कभी जघन्य से अजघन्य, कभी उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट होता रहेगा, तो उसको कहेंगे पद परिवर्तन। तो पद परिवर्तन की अपेक्षा और नरक से निकलने और नरक में प्रवेश करने की अपेक्षा की करो। उत्कृष्ट आदि चारों का शादी और अध्रुव भाव बन जाता है, ये वो मार्गणा ही समाप्त होती है या नए से शुरुआत होती है, इसलिए शादी भी कहेंगे और अध्रुव भी कहेंगे। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। विशेषार्थ ओग से मुनि कर्म का जघन्य अनुभाग शपक सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय में होता है, अतः वह शादी और अध्रुव है। अध्रुव क्योंकि वो रहता नहीं है, बस एक समय के लिए नष्ट हो गया, उससे पहले अजघन्य अनुभाग होता है। अतः जो सूक्ष्म सांप्रायिक शपक नहीं हुए उनके अजघन्य अनुभाग अनादि है। भव्य की अपेक्षा वह ध्रुव है और अभव्य की अपेक्षा ध्रुव है। यह जगन्य को पहले समझाया है, जगन्य अजगन्य को, तथा उत्कृष्ट अनुभाग का बंध उत्कृष्ट संक्लेश परिणामी मिथ्या दृष्टि के होता है। और तभी उसका सत्व रहता है। जब बंध हो रहा है तब उसका सत्व है, जब तक उसका घात नहीं करता। हमने देखा था अंतर्मुहूर्त में उसका, फिर उत्कृष्ट बंध नहीं हो रहा है तो उसका घात हो जाएगा। तो जब तक उसका सत्व रहता है, जब तक उसका घात नहीं होता, अतः वह सादी और अध्रुव है, क्योंकि लगातार उत्कृष्ट नहीं रहता है। मान लेते अंतर्मुहूर्त में वो नष्ट हो गया, यानी उसका अनुभाग कम हो गया, तो वो तो अध्रुव हो गया। अतः वह सादी और अध्रुव है। उत्कृष्ट अनुभाग के पश्चात जो बंध होता है उसे अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध कहते हैं। यानी उत्कृष्ट नहीं हो रहा है अनुभाग का बंध, तो उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। अतः अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध भी सादी और अध्रुव ही होता है। जिसके उत्कृष्ट बंध नहीं हो रहा, तो पहले उत्कृष्ट हो रहा था, अब उससे नीचे वाला कहेंगे तो हम कहेंगे अनुत्कृष्ट हो रहा है, तो उसको आदि हो गई, तो सादी होता है और वह भी अध्रुव ही होता है। मार्गणाओं में उत्कृष्ट आदि चारों पद, पद कहा ना इसको, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट सॉरी यहाँ सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव, ये चार पद की बात चल रही है। उत्कृष्ट आदि चारों पद, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य और अजगन्य, इसकी बात चल रही है ना। सादी और अध्रुव ही होते, क्या कहना चाहते हैं? मार्गणाओं में ये पद कैसे है, सादी है और अध्रुव है, क्योंकि एक तो मार्गणाएं बदलती रहती है, इसलिए भी उसको अध्रुव कहेंगे। मार्गणाएं चेंज हो गई ना, जीव दूसरे मार्गणा में चला गया। और दूसरी बात क्या है, कोई मार्गणा नहीं भी बदलते, जैसे अभव्य, भव्य मार्गणा की अपेक्षा जो अभव्य जीव है उनके कायम अभव्य मार्गणा ही रहेगी, वो तो चेंज होने वाली नहीं है। तो उनमें उत्कृष्ट आदि पद बदलते रहते हैं। अतः मार्गणाओं में उत्कृष्ट आदि चारों के सादी और अध्रुव ये दो पद ही संभव है। यानी अभव्यों में भी कि जो मार्गणा नहीं बदलती, तो उसमें उत्कृष्ट वगैरह पद बदलते रहते, अभव्यों की अपेक्षा भी कहेंगे, अभव्यों की अपेक्षा उत्कृष्ट, अभव्यों की अपेक्षा जघन्य, तो उसमें तो चारों ही पद बदलते रहेंगे। ओग की अपेक्षा अभव्यों में ध्रुव कहा था, परंतु अभव्य मार्गणा की अपेक्षा में वो उसको अध्रुव कहेंगे, क्यों? मार्गणा भले ध्रुव है परंतु चार पद चेंज होते रहते, उसकी अपेक्षा से लेना। ख्याल में आई बात? नरक ऐसी मार्गणाएं, मार्गणाएं बदलती है और चार पद भी बदलते हैं, और अभव्य मार्गणा ऐसी है कि मार्गणा तो फिक्स है, कायम अनादि अनंत, परंतु वो चार पद बदलते रहेंगे उसके लिए। तो वो चार पद उस मार्गणा की अपेक्षा के चार पद लेना है, क्योंकि अभव्य में सम्यक तो ही नहीं होगा, तो आगे के जगन्य ओघ जगन्य होने का सवाल नहीं, तो आदेश जगन्य उसमें होगा। इसलिए मार्गणाओं में उत्कृष्ट आदि चारों के सादी और अध्रुव ये दो पद ही संभव है। ये बात ख्याल में आई यहाँ तक? अभी हम 12 नंबर का पॉइंट देखेंगे, स्वामित्व। स्वामित्व ने एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व निकाल, तीन पेज पर हमने देखा था ना। हाँ, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व चले गए 12 नंबर का पॉइंट। स्वामित्व दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। यहाँ उत्कृष्ट स्वामित्व से प्रयोजन है, यानी पहले उत्कृष्ट का कथन करेंगे। उत्कृष्ट स्वामित्व का अर्थ होता है उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का स्वामी कौन है, उसकी बात चल रही है। तो निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। यानी सभी जीवों में अगर विचार करेंगे तो उत्कृष्ट का स्वामी कौन है, उसको उत्कृष्ट का निर्देश कहेंगे, और सभी जीवों में नहीं मार्गणा ओघ में कहेंगे, और अपने अपने मार्गणाओं में जो उत्कृष्ट होगा उसको आदेश उत्कृष्ट कहेंगे। ओघ की अपेक्षा मौनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग किसके होता है? यहाँ तो केवल मूल प्रकृति की बात चल रही है, उसके भेदों की चर्चा यहाँ पर नहीं है। तो कहते उत्कृष्ट अनुभाग बंध करके जो जीव जब तक उसका घात नहीं करता है, क्या कहते हैं, अनुभाग बंध होने के बाद भी उसका घात होता रहेगा सत्ता में पड़े पड़े, तो जब तक उसने बंध तो किया है और उसका घात अब तक नहीं हुआ है, जब तक तब तक वह एकेंद्रिय हो या द्विंद्रिय हो या तीनद्रिय हो या चौइंद्रिय हो या अथवा संगी पंचेंद्रिय हो, किसी भी गति में वर्तमान किसी भी जीव के उत्कृष्ट अनुभाग होता है। उत्कृष्ट अनुभाग का बंध कौन करता है? संक्लिष्ट संक्लेश परिणाम वाला संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव। अब उसने अनुभाग का घात किए बिना अन्य पर्याय में जन्म लिया, तो वहां भी वो उत्कृष्ट अनुभाग उसकी सत्ता में है। अब वो निशे जैसा मत सोचना, एक निशे गल गया और फिर बाद में वहां चला गया, वो बात यहां नहीं होती है। जितने निशे पड़े उसमें उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाले भी वहां है परमाणु, तो हम कहेंगे वो भले एकेंद्रिय में है फिर भी वो उत्कृष्ट अनुभाग वाला जीव है। अश्विन भाई ख्याल में आई बात? किंतु अब क्या कहते हैं, असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यंच और मनुष्य, ये कौन है? भोग भूमि के जी। तथा मनुष्यों में ही जिनकी उत्पत्ति होती है उन देव। अब मेरा प्रश्न है लक्ष्मी जी, ऐसे कौन से जीव है देवों में कि जो मात्र मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं? बहुत अच्छा, आनंद से ऊपर। क्यों? सहस्रार तक के जीव मनुष्य या तिर्यंच में उत्पन्न हो सकते हैं। समय दृष्टि क्राइटेरिया नहीं लगाया है। हाँ समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी, मिथ्या दृष्टि देव भी, कौन से ग्रहवेक वाले आनंद से लेकर ऊपर वाले, वो भी मनुष्य में ही उत्पन्न होते हैं। समय दृष्टि तो होंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, परंतु उसमें अपना लक्षण अधूरा रहता है, अव्याप्ति दोष आ जाएगा उसमें। क्यों? कुछ मिथ्या दृष्टि भी मात्र मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, कौन से? आनत प्राणत तारण अच्युत वगैरह जो है, और नीचे भी मिथ्या दृष्टि जीव है, जरूरी नहीं कि सब तिर्यंच में जाएंगे, वो तो मनुष्य में आए वहां के भी आएंगे, भुवनत्रिक के भी आएंगे और सहस्रार तक के भी। ऑप्शन क्या है? मनुष्य या तिर्यंच, और ऊपर के मात्र मनुष्यों में उत्पन्न हो। ख्याल में ही नहीं बात दोनों का डिफरेंस? हाँ। यहाँ वो बात नहीं हो रही, फिर पढ़ना इसको। देखो ये उत्कृष्ट अनुभाग, जो उत्कृष्ट अनुभाग है वो किसमें किसमें नहीं होता उसकी बात चल।
देवों की अपेक्षा,
एक तो असंख्यात वर्ष की आयु वाले ने भोग भूमि वाले तिर्यंच और मनुष्यों में उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता नहीं है, जिसके सत्ता है वो वहां नहीं जाएगा, एक बात। और दूसरी वाक्य क्या है? मनुष्य, पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो ख्याल में आएंगे, मनुष्यों में ही जिनकी उत्पत्ति होती है उन देवों में उत्कृष्ट अनुभाग नहीं होता। दूसरी लैंग्वेज में कहना है आनत से लेकर ऊपर के देवों में उत्कृष्ट अनुभाग नहीं होता।
Can you come to this, के नीचे के देव भी जो
उत्कृष्ट अनुभाग किसके नहीं होता वो बात चल रही, कम होता है कि नहीं उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है, उत्कृष्ट अनुभाग वाले का स्वामित्व चल रहा है।
नीचे के देव जो मनुष्य में उत्पन्न होने
उत्कृष्ट नहीं होता नहीं। वही तो बात चल रही है,
नीचे के देव जो मनुष्य में उत्पन्न होने वाले हैं उनके अंदर उत्कृष्ट
अनुभाग हो सकता है, उसमें हो सकता है, जाते ही नहीं वहां, तो बंद होता नहीं उत्कृष्ट का और वहां जाते भी नहीं है। नीचे के देव वो तो उत्कृष्ट अनुभव का बंद भी कर सकेंगे मिथ्या दृष्टि है तो, क्योंकि वहां संकलेश परिणाम वाले भी होते हैं ना, जाते तभी तो जाएंगे। उत्कृष्ट बंद भी करते हैं सत्तर कोड़ा कोड़ी का, तो उत्कृष्ट अनुभव का बंद भी करेंगे वहां पर, स्थिति उत्कृष्ट बांधते हैं ना नीचे के देव, हमने सहस्रार तक के देखे थे। अब यहाँ क्या देखा है, किसमें नहीं होते ये यहाँ बात चल रही थी। पहले ये बताया था कि जिसने उत्कृष्ट अनुभाग बांधकर अन्य गति में जन्म लिया है, ऐसे किसी भी जीव को, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय कोई भी हो, उसको तो उत्कृष्ट अनुभाग हो सकता है। क्यों? एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय का इतना उत्कृष्ट संकलेश तो है नहीं, परंतु पंचेंद्रिय में से उत्कृष्ट अनुभाग के साथ जो आया है और जिसने अभी तक घात नहीं किया है, उसके एक इंद्रिय पर्याय द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुर्द्रिय कहीं भी का क्यों ना हो, उसमें उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाएगा। एक बात, कहाँ नहीं पाया जाता है, तो कहते हैं भोग भूमि वालों में नहीं पाया जाएगा, और आनत से ऊपर जो देव है उनमें उत्कृष्ट अनुभाग नहीं पाया जाएगा, यानी वहां के जो बांधते ही नहीं है, परंतु जो पूर्व में जिन्होंने बांधा ऐसे सत्ता वाले जीव भी वहां उत्पन्न नहीं होंगे। उसके जो नीचे के देव है उसमें तो हो सकता है। बात ख्याल में? फिर से
मेरा यह पूछना है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होंगे उनके उत्कृष्ट अनुभाग तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है।
यहाँ
मेरा पूछना है,
किसी भी सम्यक दृष्टि में उत्कृष्ट अनुभाग होता ही नहीं, किसी भी सम्यक दृष्टि में। यहाँ मिथ्या दृष्टि जो बांध कर जो अन्य गति में उत्पन्न होते है उसकी बात चल रही है। मिथ्यात्व के साथ अन्यत्र उत्पन्न होने वाले ऐसे जीव लेना है। सम्यक दृष्टि के तो अनुभाग घात होकर उनको सम्यक तो हुआ है, उसकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं है। उत्कृष्ट अनुभाग बांधने वाले जीव जब तक उत्कृष्ट अनुभाग सत्ता में पड़ा है तब तक वो असंख्यात यानी भोग भूमि में भी जन्म नहीं लेंगे और आनत आदि में भी उनका जन्म नहीं होगा। जिन्होंने मिथ्यात्व का अनुभव उत्कृष्ट बांध कर यहाँ वो जीव जन्म नहीं लेंगे, ये बात चल रही है। इनको क्यों उठाया? क्योंकि यहाँ चर्चा किसकी चल रही थी? उत्कृष्ट अनुभाग बांध कर एक इंद्रिय आदि पंचेंद्रिय तक के उत्पन्न होने वाले जीवों की बात चल रही है। मनुष्य में जिसने बांधा है, तिरंच में जिसने बांधा है, वो नरक में भी जा सकता है, देव में भी जा सकता है, परंतु यहाँ कौन से वाले लिए? अनंत आदि से। यानी अनंत से ऊपर वाले देव यहाँ लेना है। अनुत्कृष्ट अनुभाग किसके होता है? तो उत्कृष्ट नहीं है वो सारे अनुत्कृष्ट है, तो जिनके सत्ता है उनके सबके कहेंगे अनुत्कृष्ट है। किसी भी जीव के होता है, उत्कृष्ट वाले के भी अनुत्कृष्ट तो होगा ना, जब उत्कृष्ट नहीं होता है तो उसके भी अनुत्कृष्ट होगा। विशेषार्थ मोहनी कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध चारों गति के उत्कृष्ट संकलेश परिणामी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव करते हैं। कोई गति नहीं छोड़ी उसमें, परंतु संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त होने चाहिए, यानी तिर्यंज भी करेंगे परंतु संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, मनुष्य भी करेंगे परंतु पर्याप्त मनुष्य होने चाहिए। अपर्याप्त उनको यहाँ छोड़ा है, उसमें उत्पन्न होने वालों को नहीं छोड़ा, वो सत्ता वाले जो वहां भी उत्पन्न हो सकेंगे। यानी मनुष्य अपर्याप्तों में उत्कृष्ट अनुभाग तो पाया जाएगा परंतु उसका बंध नहीं करेंगे, वो पूर्व भव से ले आए हैं अनुभाग वो वहां पाया जाएगा। कहते हैं मुनि कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध चारों गति के उत्कृष्ट संकलेश परिणामी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव करते हैं। करने पर यानी बंद करने पर जब तक उसका घात नहीं किया जाता तब तक वह जीव मरकर जहां भी उत्पन्न होगा उसके उत्कृष्ट अनुभाग का सत्व पाया जाएगा। इसी कारण से एकेंद्रियादिक में यानी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय कोई भी पर्याय ले लो उत्कृष्ट अनुभाग का बंधन होने पर भी उसका सत्व कहा है। यहां तक तो क्लियर है ना। किंतु भोग भूमिया जीवों के मोनी का उत्कृष्ट अनुभाग सत्व नहीं होता क्योंकि न तो वहां मोनी का उत्कृष्ट अनुभाग ही होता है और न उसकी सत्ता वाला जीव वहां जन्म ही लेता है यानी वहां मिथ्या दृष्टि तो जन्म लेते हैं परंतु उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला जीव नहीं बन तो जो जन्मने वाला है तो उसका अनुभाग घटाकर फिर वहां उत्पन्न होगा अनुत्कृष्ट करके। इसी प्रकार आनतादि स्वर्ग के देवों के भी मुनि के उत्कृष्ट अनुभाग का सत्व नहीं होता उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला कोई जीव यदि भोग भूमि आनतादि स्वर्ग में उत्पन्न होने वाला होता है होने वाला यानी होने के पहले की बात चल रही होने वाला होता है तो उत्कृष्ट अनुभाग का घात करके ही उत्पन्न हो सकता है। उत्कृष्ट अनुभाग से अतिरिक्त अनुभाग को अनुत्कृष्ट अनुभाग कहते हैं और ऐसा अनुभाग प्रायः सभी मोही जीवों के पाया जाता है उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। ये हम 12 पृष्ठ पर आए हैं। यहाँ कहते हैं विशेषार्थ में कि मोनी का उत्कृष्ट अनुभाग कौन करते हैं कौन से गति वाले करेंगे संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त चारों गति के कर सकते हैं और ऐसा जीव जो मरकर यानी उत्कृष्ट अनुभाग का घात किए बिना मरकर कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है कहीं भी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक तो उसने इस भव में भले बंधन नहीं किया उत्कृष्ट फिर भी पूर्व भव का बंध किया हुआ यहाँ उसकी सत्ता पाई जाती है क्यों घात किए बिना वह उत्पन्न हुआ है। परंतु इसके लिए वो कहते हैं कि जो भोग भूमिया जीव है विशेषार्थ के 5वीं लाइन में कहा है कि भोग भूमिया जीव उनमें मोनी का उत्कृष्ट की सत्ता नहीं है अनुभाग की क्यों नहीं है ना तो उत्कृष्ट का बंध करते हैं और ना ही जो जीव उसमें उत्पन्न होते हैं उनका उत्कृष्ट सत्व पाया जाता है। देखा ना वहां मोनी का उत्कृष्ट अनुभाग बंध भी नहीं होता और न उसकी सत्ता वाला जीव भी वहां जन्म लेता है। दोबारा यही बात कहाँ होती है आनतादि स्वर्गों में भी क्या है वहां भी मोनी का उत्कृष्ट अनुभाग नहीं पाया जाता जघन्य तो पाया जाएगा वो किसमें है मिथ्या दृष्टि के समय दृष्टि उसकी यहाँ चर्चा नहीं चले सम्यक दृष्टि के तो उत्कृष्ट होगा ही नहीं उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है परंतु उत्कृष्ट संकलेश करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव आनत में उत्पन्न नहीं होगा जब तक वो अनुभाग का घात नहीं करता है। इसलिए आगे का वाक्य क्या लिखा है उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला 12 नंबर का पेज उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला कोई जीव 3, 3, 6, 2, 8वीं लाइन में आए हम यदि भोग भूमि या आनतादि स्वर्ग में उत्पन्न होने वाला होता है यानी होने की पूर्व अवस्था बताए यदि अभी वहां वो जन्म लेने वाला है तो क्या होगा तो उत्कृष्ट अनुभाग का घात करके ही उत्पन्न हो सकता है। तो समझता होगा ना अभी मैं आनत में जाने वाला हूं अभी मुझे घात करना है ये सहज होता है जहाँ की जैसी आयु बांधी है वैसे उस समय परिणाम भी होगे क्योंकि वहां जाने वाले शुक्ल लेशा में ही मरेंगे और शुक्ल लेशा में ही उत्पन्न होगे तो वहां अनुभाग का वैसा घात होकर ही वहां उत्पन्न होगे। वो हमने देखा उत्कृष्ट अनुभाग से अतिरिक्त अनुभाग को अनुत्कृष्ट अनुभाग कहते हैं और वो कहाँ कहाँ होगा जो उत्कृष्ट है वो अनुत्कृष्ट मैं सभी मोही जीवों में। प्रायः क्यों कहा? उत्कृष्ट वालों को छोड़ना है ना, इसलिए सभी मोही जीवों को लिया। कभी कभी ऐसा होगा कोई एक भी जीव नहीं होगा उत्कृष्ट वाला, तो सभी जीव होंगे मोहिनी वाले, वो तो सारे अनुत्कृष्ट वाले कहेंगे। अब यह मार्गणाओं में घटित करेंगे। आदेश की अपेक्षा नारकियों में, अब नारकियों में उत्कृष्ट भी, उसका अपना उत्कृष्ट लेना है और अपना जघन्य लेना है। तो मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग किसके होता है? उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करके जब तक उसका घात नहीं करता, तब तक किसी भी जीव के मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सातवें नरक का नारकी चाहिए, पहले का नहीं चाहिए, वो बात नहीं है। कोई भी जीव जो उसके उत्कृष्ट संकलेश परिणाम के कारण उत्कृष्ट बंद होता है अनुभाग का, और जब तक उसका घात नहीं होता है, तब तक उसको उत्कृष्ट वाला कहेंगे, सत्ता वाला। अनुत्कृष्ट अनुभाग किसके होता है? किसी भी जीव के होता है। जो उत्कृष्ट नहीं है उस सबके अनुत्कृष्ट होगा। इसी प्रकार ये जो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट के नारकियों में घटित किया है, ऐसा ही सब नारकियों ने पहले नरक से लेकर सातवें नरक तक के सभी नारकी, सभी तिर्यंच, एकेंद्रियादि सभी, एकेंद्रियों में अपने योग्य उत्कृष्ट कौन? जो संगी में से उत्कृष्ट के साथ आया है और बाद में वो अपने योग्य जघन्य उसने कर लिया है, तो जो उत्कृष्ट नहीं उसकी बात, यहाँ जघन्य की बात तो यहाँ नहीं उठाई है। जो उत्कृष्ट नहीं उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। तो सभी तिर्यंच लिए, एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के सब मनुष्य, क्योंकि यहाँ जघन्य का प्रकरण नहीं है, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का है। तो क्या अपर्याप्त मनुष्यों में भी उत्कृष्ट होगा? क्योंकि पर्याप्त मनुष्यों में से संकलेश के कारण जिसने अनुभाग उत्कृष्ट बांधा है और घात किए बिना जो वहां उत्पन्न हुआ है, उसके उत्कृष्ट की सत्ता होगी। सामान्य देव, इन जनरल बात करेंगे तो देवों में भी होता है जो उत्कृष्ट संकलेश परिणामी है। भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देव, अब बात आई नहीं उत्कृष्ट किसके होता है? तो इनके होता है। किसके नहीं होगा? तो ऊपर के, आनत से लेकर ऊपर नहीं होगा। पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, वैक्रिक काय योगी, तीनों वेदी, चारों कषाय वाले, तीनों अज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी, शुक्ल लेशा के सिवा शेष पांचों लेशा वाले, भव्य अभव्य, मिथ्या दृष्टि, संगी और आहारक जीवों में जानना चाहिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति किसके होती है? जो मनुष्य मनुष्यनी पंचेंद्रिय तिर्यंच अथवा पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके उसका घात किए बिना ही। देखो मेरा प्रश्न है, हमने तो देखा था उत्कृष्ट अनुभाग का बंध कौन करते हैं? चारों गति वाले संगी है, पर्याप्त है, मिथ्या दृष्टि है, वो करते हैं। तो यहाँ केवल मनुष्य मनुष्यनी पंचेंद्रिय तिर्यंच और योनिनी तिर्यंच योनिमति क्यों लिए? हम लक्ष्मी बहन आप कहेंगे। हाँ बोलो, आप बोलो बानो। हाँ बहुत अच्छा। देव और नार की अपर्याप्तों में उत्पन्न नहीं होते, ख्याल है ना? इसलिए पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त में आने वाले कहाँ से आ सकते हैं? मनुष्य तिर्यंचों में से, पर्याप्तों में से, क्योंकि अधिक बंद करके घात किए बिना उत्पन्न होने वाले जीव हैं। तो मनुष्यों में अपर्याप्त मनुष्य को नहीं लेना है। तो मनुष्य लिया और मनुष्य ने भी लिए, तिर्यंचों में भी पंचेंद्रिय तिर्यंच भी लिए और तिर्यंच योनिमति भी लिए, उनमें मैक्सिमम उन अनुभाग का बंद करके, क्या कहते हैं, उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करके 13 पुष्पराय उसका घात किए बिना ही यदि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में उत्पन्न होता है तो उस पंचेंद्रिय अपर्याप्तक के उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति होती है। अब यही बात हम अन्यत्र भी घटित करेंगे कि जो मनुष्य अपर्याप्त में उत्पन्न हुआ है, तो देखो इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त सब एकेंद्रिय सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त सब पांचों स्थावर काय त्रस अपर्याप्त औदारिक मिश्र योगी वैक्रिक मिश्र योगी कार्मण का योगी असंगी और अनाहारक जीवों में जानना चाहिए। बात ख्याल में आई है, पूर्व मोह में बांध कर इन मार्गणाओं में उत्पन्न हुआ है घात किए बिना, ऐसा जीव यहाँ लिया है। एक इंद्रियों में तो हम देवों में से भी ला सकते हैं, नरक में से लाना कि नहीं लाना, एक इंद्रिय नहीं ला सकते। सब एक इंद्रिय का अर्थ होता है एक इंद्रिय, एक इंद्रिय पर्याप्त, एक इंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय, सभी सावर काय वाले सभी लेना। ये यही जो हमने अभी जो बात की ना, मनुष्य तिर्यंच में से आने वाले जीव लेना यहाँ पर। बादर एक इंद्रिय, वायु का एक उत्कृष्ट होगा, क्यों, मनुष्य में वहां जा सकते हैं ना, सब में होगा। पर्याप्त ये हमने देखा अनाहारक जीवन तक, विशेषार्थ मूल में नारकी से लेकर आहारक पर्यंत जो मार्गणाएं गिनाई है अभी हमने देखी ना सभी, उनमें मुनि का उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकता है। देखो कौन से लिए, 12 नंबर के पेज पर जो हमने नारकी के बाद जो लिस्ट देखी है, देखा ना सब नारकी सब तिर्यंच वगैरह वगैरह, और वहां तो आहारक तक लिए थे, परंतु उस लिस्ट में ना औदारिक मिश्र लिए थे, ना वैक्रेक मिश्र लिए थे, ना पंचेंद्रिय अपर्याप्त लिए थे, ख्याल में, क्यों, क्योंकि ये ऐसी मार्गणाएं थी जो स्वयं उत्कृष्ट बंद करते हैं अनुभाग का। अब बाद में जहां सत्ता भी पाई जाती है, क्यों, पूर्व भव में जो बांध कर यहाँ आए हैं, जैसे पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त लिए, मनुष्य भी अपर्याप्त लिए, औदारिक मिश्र लिए, वैक्रिक मिश्र लिए, अन्य जो जो मार्गण है कारमान का योग वगैरह लिए, तो यहाँ पूर्व भव में बांध कर यहाँ आया हुआ जीव लिया। ये मार्गणा भी हम 13 पृष्ठ पर हमने देखी। तो कहते हैं विशेषार्थ फिर पढ़ते हैं, मूल में नारकी से लेकर आहारक पर्यंत जो मार्गणाएं गिनाई है उनमें मोहनीय का उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकता है, अतः उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करके जब तक उसका घात नहीं किया जाता तब तक उक्त मार्गणाओं में उत्कृष्ट अनुभाग रहता है, तथा पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तक में और मूल में गिनाई गई मनुष्य पर्याप्तक से लेकर अनाहार मार्गणा पर्यंत मार्गणाओं में अनाहारक चाहिए, वहां तक यद्यपि मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंद तो नहीं होता, किंतु कोई मनुष्य आदि, आदि में किसको लेना, मनुष्य तिर्यंच, तो जहां एप्लीकेबल है वहां मनुष्य तिर्यंच। अब अनाहारक में आने के लिए कोई मनुष्य तिर्यंच की जरूरत नहीं है, वो नरक और देव में से भी आ सकता है, तो आदि में जहां जो योग्य है उसको लेना, क्योंकि मार्गणाएं तो हमने ऊपर बहुत सारी देखी, परंतु उसमें जहां से आ सकता है। अब औदारिक मिश्र में कौन आएगा,
देवनारकी बंद
चारों गति में से औदारिक मिश्र में आने वाला, इसलिए आदि में जहां वो उत्कृष्ट बंद करके यथा योग्य वहां आया है वो जीव लेना। तो कोई मनुष्य आदि यदि उसका बंद करके, यानी घात किए बिना आना चाहिए ना, बंद तो किया उत्कृष्ट बंद करके, उक्त मार्गणाओं में आ जाते हैं उनमें भी उत्कृष्ट अनुभाग का सत्व पाया जाता है। इसके लिए हमने अपवाद कौन सा देखा था, भोग भूमि और आनंद से ऊपर वाले, वो तो पहले बात आई थी, यहाँ तो अभी आदेश की बात चल रही है। अभी मार्गणाओं में आनंद से लेकर ऊपर की बात अलग से बता रहे हैं। आनंद स्वर्ग से लेकर नव ग्रेवेक तक के देवों में ऊपर तो सवाल ही नहीं, क्योंकि सभी सम्य दृष्टि है तो सभी द्विस्थानिक वाले ही होंगे। तो आनंद स्वर्ग से लेकर नव ग्रेवेक तक के देवों में मौनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग किसके होता है? अब यहाँ जो उत्कृष्ट पूछा है वो ओघ का उत्कृष्ट नहीं समझना। ओघ की उत्कृष्ट की जब बात की थी तो कहा था ओघ का जो उत्कृष्ट है वो ना भोग भूमि में होता है ना आनंद आदि में होता है। ओघ का उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम पॉसिबल अनुभाग कहीं जो हो सकता है बंद की अपेक्षा। अब यहाँ जो उत्कृष्ट बोल रहे हैं वो आनंद की अपेक्षा उत्कृष्ट है ना, ये आदेश की बात चली है, यानी उसका अपना उत्कृष्ट समझना।
आनंद में जो उत्पन्न होने वाले जो उसने पूर्वभव में उत्कृष्ट बंद आनंद की अपेक्षा किया था वही लेना कि आनंद में भी उत्कृष्ट बंद हो सकता है आनंद की अपेक्षा नहीं?
आनंद की अपेक्षा आनंद का जो लेंगे, आनंद की अपेक्षा कौन करेंगे, वहाँ मिथ्या दृष्टि भी है ना। हाँ तो यहाँ देखो आनंद स्वर्ग से लेकर नव ग्रेवेक तक के देवों में मौनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग किसके होता है? जिसने आनतादि स्वर्ग के योग्य मौनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता है ऐसा जो द्रव्यलिंगी मरकर,
ये जो मनुष्य में उत्कृष्ट बंद किया है आनत की अपेक्षा,
आनत की अपेक्षा आनत में जा सकता है ऐसा बंद है। आनत में जाने वाला जघन्य भी बंद कर सकता है, थोड़ा अनुत्कृष्ट भी कर सकता है,
बंद करेगा।
उसने उत्कृष्ट किया है वहाँ जाने योग्य उत्कृष्ट, ओग की अपेक्षा उत्कृष्ट
नहीं।
वहाँ जाने के योग्य जो अलग अलग स्थान है उसमें टॉप मोस्ट। तो क्या कहते हैं, आनतादि के स्वर्ग के योग्य मौनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता है ऐसा जो द्रव्यलिंगी मरकर, यहाँ द्रव्यलिंगी को लिया है।
तो मनुष्य जो बंद करता है उत्कृष्ट आनंद की अपेक्षा,
हाँ आनंद में जो जा सकता है ऐसा मनुष्य लिया, वो भी द्रव्यलिंगी मरकर अपने योग्य उक्त देवों में उत्पन्न होता है। वह जब तक उसका घात नहीं करता है तब तक उसके उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति होती है, और उत्कृष्ट अनुभाग का घात कर देने पर अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति होती है। जो उत्कृष्ट नहीं वो अनुत्कृष्ट। अब अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक उत्कृष्ट अनुभाग उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति किसके होती है वो हो भी बराबर करना ही दिख रहा है। फिर से पढ़ती हूँ मैं, आपने करेक्शन किया होगा तब तक। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति किसके होती है? अनुदिश आदि के योग्य उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला, आगे क्या लिखा, जो वेदक सम्य दृष्टि, वहाँ कौन कौन उत्पन्न हो सकते हैं अनुदिश आदि में?
वेदक शाही
भावलिंगी मुनि वो नहीं पूछ रहे मैं,
उपशम शाही और वेदक
भावलिंगी ही होगे, परंतु सम्यक तो तीनों हो सकते हैं। कौन से कौन सा उपशमिक होगा? द्वितीय उपशम वाला, द्वितीय उपशम वाला हो सकता है, शाहीक हो सकता है, वेदक हो सकता है। तो जिसने उपशम द्वितीय उपशम किया उसने अनुभाग कांडक तो किया होगा, पहले शाहीक करने में भी किया होगा, तो अधिक अनुभाग किसके होगा?
वेदक
के होगा। इसलिए कहते हैं अनुदिश के योग्य जो उत्कृष्ट अनुभाग है, नीचे आनंद आदि के योग्य कहा था, यहाँ अनुदिश के योग्य जो उत्कृष्ट अनुभाग है आदि के, जो वेदक सम्य दृष्टि अपने योग्य उक्त देवों में उत्पन्न होता है, वह जब तक उत्कृष्ट अनुभाग का घात नहीं करता है, घात क्यों करेगा? करण परिणाम करेगा ना, विसंयोजना करेगा, जो कोई बात होगी वो क्या करेगा, क्या उसकी बात हम आगे पढ़ेंगे। तो जब तक उत्कृष्ट अनुभाग का घात नहीं करता है तब तक उसके उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति होती है। जैसे स्थिति में हमने देखा तो लगातार एक एक कम हो रहा है, वो ऐसा यहाँ नहीं होगा। हाँ, अंतर्मूर्त तक रहेगा, परंतु एक एक समय में जैसे निषेक गलता है वैसे यहाँ अनुभाग नहीं गलते, क्योंकि हाँ उसके सत्ता में पड़े रहते हैं।
क्योंकि इधर सम्यक दृष्टि मनुष्य है, वो उत्कृष्ट उसके योग्य जो उत्कृष्ट बनता
है। अभी मनुष्य है ना, ये तो मुनिराज है।
हाँ।
मुनिराज है ना, तभी तो ऊपर जाएंगे। हाँ,
वही मुनिराज जब ये आनंद के ऊपर है, ग्रेवी के ऊपर जो स्वर्ग में जाते हैं,
हाँ।
तभी उनके चौथे गुणस्थान की अपेक्षा बंध ज्यादा हो जाएगा।
वहाँ जाने पर बंध नहीं, क्योंकि जितना है उससे अधिक तो बंध नहीं करेंगे। हाँ। अनुभाग अधिक नहीं बांधेंगे, द्विस्थानिक ही बांधेंगे।
नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या था, जो द्वितीय
मुनिराज जो कम बांध रहे हैं, हाँ। और वहाँ की अपेक्षा, अभी वो वहाँ की अपेक्षा कहेंगे, वो आनंद के योग्य जो उत्कृष्ट है। यहाँ क्या कहा देखो,
अनुदिश की बात,
तो अनुदिश की बात है।
हाँ।
तो उत्कृष्ट उसके योग्य उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला वेदक सम्य दृष्टि अभी अधिक बंद करता, ऐसा नहीं कहा, जब तक अपना घात नहीं करता कहा। नहीं तो कहते ना कि वहां जाने पर उसने उत्कृष्ट अनुभाग का बंद किया, उसका तो नियम से घात ही होगा वहां पर,
अल्पतरी होगा।
तो जब तक उसका घात नहीं होता है तब तक क्या कहेंगे उसको, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाला है। और उत्कृष्ट अनुभाग का घात करने पर अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति होती है। आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगियों में अब ये होते ही द्विस्थानिक है ना, तो उसमें उसके योग्य उत्कृष्ट लेना भी।
हाँ।
उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति किसके होती है, तो कहते 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला जो वेदक सम्य दृष्टि संयमी, जैसे हमने अनुदिश में तीनों सम्य दृष्टि देखे थे, वैसे आहारक में कौन कौन से सम्य दृष्टि देखने हैं?
हाँ, साईक और वेदक।
क्यों
यहाँ पे चार चीज
क्यों होते हैं? मेरा प्रश्न है, महावलिंगी मुनिराज है, आहारक का योग वाले हैं, तो उसमें दो ही सम्यक को क्यों लेना, ऑप्शन सम्यक को क्यों नहीं लेना, बोलो।
चार चीज साथ में नहीं होती
ना। हाँ हाँ, ये चार चीजें एक साथ नहीं होगी, एक होगा तो दूसरा तीसरा कोई भी नहीं होगा। कौन कौन सी चार बातें? एक औपशमिक सम्यक, दूसरा आहारक का योग, मन परे ज्ञान और परिहार विशुद्धि। एक है तो दूसरा नहीं होगा, उसके एट ए टाइम दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं, आहारक का योग्य में अभी दो ही जीव है, दो ही जीव है ना, दो प्रकार के जीव है, क्यों क्षायिक समय दृष्टि हो गए या वेदक में, उसमें अनुभव किसके ज्यादा होगा?
वेदक, अवेदक को।
वेदक वाले के। तो यहाँ क्या कहते हैं, 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला जो वेदक समय दृष्टि संयमी, क्या वेदक समय दृष्टि भी अन्य अन्य की सत्ता वाले हो सकते हैं? प्रश्न क्या, फिर सुनना, वेदक समय दृष्टि जीव कितने प्रकृतियों की सत्ता वाले होंगे?
24 की होगी, 28 की।
हाँ, बाय 24 के होते, 24 वाले कौन होते हैं?
विसंयोजना कर
ली, विसंयोजना वाले, तो विसंयोजना के काल में अनुभाग तो घटाएंगे, इसलिए उसको नहीं लिया।
28 के
और भी कोई होते हैं अन्य सत्ता वाले?
वेदक
24 वाला हमने देखा,
हर अंक में 22 की सत्ता वाला नहीं होगा, 24 की और
28। नहीं, मेरा प्रश्न जनरल चल रहा है।
अच्छा,
वेदक आहार की बात भूल जाओ।
ओके।
वेदक सम्य दृष्टि जो है उसमें कितनी कितनी सत्ता वाले जीव हो सकते हैं? पहले में पहले बोला 28।
हाँ, 24।
24 कौन?
विसंयोजना वाले,
विसंयोजना करते तो 24।
23
कौन?
जो मिथ्यात्व की,
मिथ्यात्व की क्षपणा पूरी हुई है उसके,
और सम्यक मिथ्यात्व की,
सम्यक मिथ्यात्व गया तो 22। 21 हो कहेंगे तो क्षायिक कहेंगे उसको, तो कृतकृत्य वेदक के अंत समय तक तो 22 की कहेंगे हम उसको। तो यहाँ कौन सा लिया है, और हमें अनुभाग मैक्सिमम चाहिए, इसलिए 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला जो वेदक सम्यक दृष्टि संयमी, संयमी की बात है ना, आहार का योग तो संयमी के होगा, छठे गुण स्थान वाले को होगा। तत्प्रायोग्य, तत्प्रयोग्य हुआ, तत्प्रायोग्य यानी उनके योग्य, उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता रहते हुए आहारक शरीर को उत्पन्न करता है, उसके उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति होती है। ये बात ख्याल में आई है, शायिक वालों के कम हो गए और वेदक वालों के ज्यादा है। वेदक भी जो अनंतानुबंधी की विषय योजना करते हैं, उनके उस काल में करण परिणाम के द्वारा अनुभाग का घात होता है, तो ऐसा वेदक लेना है कि उसने अनुभाग का जितना है उसका घात तो नहीं किया है और आहार का योग किया है घात होने के पहले। अन्य के अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति होती है, अनुत्कृष्ट में अभिक्षायिक वाले के मिनिमम पॉसिबल होगी तो वो सारा अनुत्कृष्ट में आ जाएगा। किसके जघन्य होती है वो विषय की जघन्य अजघन्य में लेंगे, उसका स्वामित्व हम अलग से देखेंगे, यहाँ मात्र उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट की ही बात हो रही है। अपगत वेद में, अपगत वेदियों में उत्कृष्ट की बात चल रही है, तो अपगत वेद में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति किसके होती है? मूल में हमने देखना है कि वो अपगत वेदिक शपक श्रेणी में भी होते हैं, उपशम श्रेणी में भी। हाँ, उपशम वाले को अनुभाग ज्यादा होगा। जो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के अवेद भागवर्ती, अवेद यानी अपगत वेद, एक है सवेद और एक है अपवेद, अपगत वेद या अवेद। उपशम श्रेणी वाला जीव, ये उपशम श्रेणी की बात महत्व की, क्योंकि अपगत वेद में उपशम श्रेणी के होते हुए अनुभाग ज्यादा होगा। प्रथम अनुभाग कांडक में विद्यमान है, उसके उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति होती है। क्या कहते हैं, उपशम श्रेणी में भी अनुभाग के कांडक होते हैं, तो कांडक हो जाए पूरा तो अनुभाग घट जाएगा, है ना? तो कांडक जब तक नहीं होता है पूरा, तब तक उतना का उतना अनुभाग रहेगा ना सत्ता में। जैसे हम क्या स्थिति में देखते थे, स्थिति में भी एक एक निषेक जाता था, यहाँ तो जब तक कांडक घात पूरा नहीं होता तब तक उतने अनुभाग की सत्ता बनी रहेगी। अनुभाग की बात चल रही है, तो प्रथम कांडक में विद्यमान है ऐसा लिया, क्योंकि अपगत वेद होने पर यहाँ कांडक घात शुरू होगा, चालू ही है, परंतु वो जीव अपगत वेदी हुआ है तो अपगत वेद वाले अवस्था का पहला कांडक। तो जब तक कांडक पूरा नहीं होता तब तक उतना जितना उसके साथ अपगत वेदी हुआ है उतना अनुभाग बना रहेगा, इसलिए उसको वहां लिया।
ये 24 की सत्ता लगती है।
हाँ, ये 24 की ही सत्ता वाले होते हैं, यहाँ शायिक भी हो गए, परंतु यहाँ तो ज्यादा अनुभाग वाला लेना है। तथा उसका घात करने पर अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति होती है। इसी प्रकार अकषाय और यथाख्यात संयतों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि उपशांत कषाय गुणस्थान के प्रथम आदि समय में, प्रथम आदि में क्या लेना, पूरा वाक्य पढ़ती फिर उसका अर्थ पूछेंगे आपको। विशेषता किससे, विशेषता बता रहे अपगत वेद से, अकषाय में क्या डिफरेंस है, विशेषता ने क्या डिफरेंस है, वहां क्या बताया था प्रथम कांडक में विद्यमान जीव लिए, यहाँ प्रथम आदि समय में उसके योग्य उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता से युक्त जीव के उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति कहनी चाहिए, क्योंकि वहां अनुभाग का घात नहीं होता, अनुभाग कांडक वहां नहीं होते हैं, वहां एक सदृश परिणाम है ग्यारहवें गुणस्थान में, है ना? उपशांत कषाय ने कौन सी गुणस्थान है, ग्यारहवां गुणस्थान। प्रथम आदि समय ने सभी समयों में, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, सभी समयों में एक सदृश परिणाम है और वहां कोई कांडक विंडक नहीं होगी यहाँ पर, इसलिए वहाँ कहते हैं वहाँ अनुभाग का घात नहीं होता, तो मैक्सिमम उसके योग्य मैक्सिमम अनुभाग के साथ यहाँ आया हुआ जीव। इसकी कंपैरिजन अनिवृत्तिक के साथ नहीं करनी है। नवे गुणस्थान में जो कोई घात हुआ है उसके बाद ग्यारहवें में है तो ग्यारहवें की अपेक्षा किसको उत्कृष्ट होगा, तो उसके योग्य जो उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला होगा तो सभी समयों में उसका उतना ही अनुभाग रहेगा। ये बात बताना चाहते, ख्याल में आई बात? अब ज्ञान मार्गणा की बात चलेगी। ज्ञान की अपेक्षा आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधिक ज्ञानी में मौनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग किसके होता है? ये अभी सम्यक दृष्टि जीव है तो कितना अनुभाग उत्कृष्ट होगा? तो द्विस्थानिक होगा। तो कहते हैं 28 प्रकृतियों की सत्ता वाले जिस मिथ्या दृष्टि ने तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभाग के साथ, तत्प्रायोग्य ने जिस अनुभाग के साथ सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, ऐसा उत्कृष्ट संकलेश वाला तो उस काल में तो सम्यक तो नहीं प्राप्त करेगा, तो यथा योग्य जितना उत्कृष्ट हो सकता है उसके साथ वेदक सम्यक तो प्राप्त किया, क्योंकि औपशमिक सम्यक तो के काल में वो अनिवृत्ति करण आदि होता है, पूर्व करण, वहां तो अनुभाग कांड घात भी होते हैं, इसलिए हम वेदक वाला लिया। बिना घात किए वो वेदक कर सकता है। जब तक वह उस अनुभाग का घात नहीं करता तब तक उसके उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति होती है। वेदक सम्यक तो के प्राप्ति के शुरू में जब तक उसने घात नहीं किया है तो उसकी सत्ता बनी रहती है।
ये चौथे गुणस्थान की अपेक्षा लेना,
चौथा गुणस्थान लेना, तथा उत्कृष्ट अनुभाग का घात करने पर अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति होती है। उसके कारण कोई भी हो, उसने विसंयोजना कर दी, कृपणा कर दी, क्योंकि अपने तो आभिनिबोधिक ज्ञानी ये मार्गणा चल रही। इसी प्रकार संयता संयत अवधि दर्शनी, यानी संयम मार्गणा की अपेक्षा संयता संयत कहेंगे, दर्शन मार्गणा की अपेक्षा अवधि दर्शनी जीवों में भी यही घटित होगा। सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। मनपर्य ज्ञान में आहारक का योगी के समान जानना चाहिए, यानी उस उत्कृष्ट के साथ वो वेदक सम्यक के साथ 28 प्रकृति की सत्ता वाला वहां आया है, उसको लिया था वहां पर। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत और परिहार विशुद्धि संयतों के जानना चाहिए। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट की बात कर रहे हैं, जगन्य की बात यहाँ नहीं हो रही है, इसलिए इसमें लिया सब। सूक्ष्म सांप्राय संयत में उत्कृष्ट अनुभाग किसके होता है? अब एक शपक में होगा कि उपशमक में होगा? उपशम श्रेणी वाले के हैं।
हाँ।
तो जो सूक्ष्म सांप्राय संयत उपशामक जीव अपने उत्कृष्ट अनुभाग के साथ विद्यमान है उसके उत्कृष्ट अनुभाग होता है, और उसका घात होने पर अनुत्कृष्ट अनुभाग होता है। शुक्ल लेशा वाले के आभिनिबोधिक ज्ञानी की तरह भंग होता है, यानी शुक्ल लेशा में भी
ये तो मिथ्या दृष्टि को होगा ना उत्कृष्ट।
हाँ, उत्कृष्ट मिथ्या दृष्टि के होगा, परंतु वो भी उसके योग्य वहाँ होगे, उसके योग्य वहाँ अनुभाग लेना शुक्ल लेशा वाले के।
शुक्ल लेशा में जो मनुष्य को जो टर्न होते रहता है वहाँ पे शुक्ल लेशा की अपेक्षा उत्कृष्ट वाला भी हो सकता है ना?
देखो यहाँ क्या लिखा है, आभिनिबोधिक ज्ञान में क्या लिया था, 28 की प्रकृति सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि उसके योग्य के साथ वेदक सम्यक तो प्राप्त किया था, यहाँ तो सम्यक तो की बात थी। अब यहाँ शुक्ल लेशा में आने के पहले उसने उत्कृष्ट संकलेश के साथ उत्कृष्ट बंध किया है और यहाँ आया है, परंतु यहाँ आया है तो कुछ उसके घात उत्कृष्ट बंद होते ही दूसरे समय में तो नहीं आएगा, समझ में आता है ना? हाँ, तो यथा योग्य उसको ले लेना। उपशम सम्यक दृष्टियों में मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभव किसके होता है? जो उपशम सम्यक दृष्टि मोहनीय कर्म के अपने योग्य, क्यों ये वैदिक सम्यक के साथ कंपेयर नहीं करना है, उपशम के अपने योग्य जो उत्कृष्ट होगा वहाँ उत्कृष्ट अनुभव की सत्ता से युक्त होता हुआ जब तक प्रथम अनुभव कांड का घात नहीं करता तब तक उसके अनुभव उत्कृष्ट अनुभव विभक्ति होती है। यहाँ आने पर भी जो कांडक घात हो गए उसके पहले की बात जब, और उसका घात करने पर अनुत्कृष्ट अनुभव विभक्ति होती है। क्षायिक सम्य दृष्टियों में मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभव किसके होगा? दर्शन मोनि की क्षपणा और अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करते समय, ये तो क्षायिक होने के पूर्व की अवस्था है ना, जिस क्षायिक सम्य दृष्टि जीव ने सबसे जघन्य अनुभाग का घात किया है अनुभाग का घात तो किया है, उसके बिना तो नहीं होगा, परंतु कम से कम किया है, तथा चारित्र मोनि का उपशम नहीं किया है, क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि उपशम श्रेणी पर चढ़ के आता है तो उसके भी अनुभाग कांडक हो गए, तो चारित्र मोनि का जिसने उपशम नहीं किया है ऐसा क्षायिक लेना है।
ये तीन बार अनिवृत्तिकरण का समान परिणाम हो जाते हैं। ये जो दर्शन मोनि की सपना करने वाले है वहाँ पे तीन बार करण परिणाम होते है।
हाँ।
चार बार, पहले विश्व योद्धा होती है, पीछे तीन बार अनिवृत्तिकरण होते हैं,
तीन बार
करण परिणाम होते हैं,
करण परिणाम तीन
और समान परिणाम हो जाते हैं। तो जिसने
कांडक घात तो अपूर्व करण से होते हैं।
हाँ।
और पहले अनुभाग में पहले अनुभाग कितना था उस पर भी निर्भर है। पहले कितना अनुभाग का घात किया उस पर भी बात।
क्योंकि समान परिणाम नहीं हो जाते जो सपना करते हैं,
समान परिणाम
की अपेक्षा।
हाँ, अनिवृत्तिकरण उनके परिणाम समान हो जाते हैं।
हाँ,
उस समय के परिणाम समान है।
हाँ, अच्छा, पर तो वहाँ पे अनुपात
वहाँ के जो पूर्व की जो बात वहाँ पर है उसमें तो वेरिएशन होगा कि नहीं होगा? ऑलरेडी जो सत्ता में है उसकी बात चल रही। अब यहाँ भी ये लिए ना, सबसे जघन्य अनुभाग का घात किया था और जिसने चारित्र मोह का यानी उपशम श्रेणी भी चढ़ के नहीं उतरा है ऐसा जीव लिया है शायिक में भी, तो उनमें फर्क तो होगा।
हाँ, चौथे गुण स्थान में पांचवें गुण स्थान में भी फर्क होगा।
इसके सिवा अन्य क्षायिक समय दृष्टि जीव के अनुत्कृष्ट अनुभाग होता है। सासाधन समय दृष्टियों में मोनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग किसके होता है? अब सासाधन में आने वाले कहाँ से आते हैं? पहले उपशम में से, तो उपशम के योग्य तो वहाँ अनुभाग था ही उनका, है ना? जो उपशम समय दृष्टि उत्कृष्ट अनुभाग के साथ सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हुआ है उसके उत्कृष्ट अनुभाग होता है और अन्य के अनुत्कृष्ट अनुभाग होता है, तो उसमें भी उपशम वालों में भी वेरिएशन है, तभी तो इसकी बात की ना। विशेषा यहाँ आभिनिबोधिक ज्ञान आदि जिन मार्गणाओं में मिथ्यात्व गुणस्थान से जाना संभव है उनमें मिथ्यात्व गुणस्थान से ले जाकर उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति प्राप्त करनी चाहिए। शुक्ल लेशा में भी ऐसे ही समझना चाहिए। और आहार का योग आदि जिन मार्गणाओं में मिथ्यात्व गुणस्थान से जाना संभव नहीं है उनमें ऐसे जीव को ले जाना चाहिए जिसके तत्प्रायोग्य, तत्प्रायोग्य ने उस मार्गणा के योग्य उत्कृष्ट अनुभाग के साथ उस मार्गणा में जाना संभव हो। इसी प्रकार सर्वत्र उत्कृष्ट स्वामित्व का विचार करना चाहिए। ये उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट की बात हुई। इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ। अब जघन्य से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। अभी ओघ में तो आसान है, दसवें गुणस्थान के अंत में जघन्य है, बाकी सब अजघन्य है। ओघ की अपेक्षा मौनी कर्म का जघन्य अनुभव किसके होता है? सकषाय क्षपक। सकषाय क्षपक क्यों कहा? और उसका भी अंतिम समय। सकषाय क्षपक तो आठवें को भी कहेंगे, नौवें को भी कहेंगे, दसवें को भी कहेंगे, पर अंतिम समय कब होगा? दसवें के अंतिम समय में, सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय। तो सकषाय क्षपक के अंतिम समय में अर्थात दसवें गुणस्थान के अंत में मौनी कर्म का जघन्य अनुभाग होता है। इसी प्रकार अब जिन मार्गणाओं में ये दसवां गुणस्थान संभव है वो मार्गणा यहाँ लेंगे। इसी प्रकार तीनों मनुष्य यानी मनुष्य सामान्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, अपगत वेदी, क्योंकि दसवां गुणस्थान भी अपगत वेदी है ना, लोभ कषाय वाले, आभि निबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, क्योंकि ये श्रेणी में है तो भी उनकी ये मार्गणा तो चलेगी, बारहवें गुणस्थान तक हो ये मार्गणा उनकी चलेगी। संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, चक्षु दर्शनी, अचक्षु दर्शनी, अवधि दर्शनी, शुक्ल लेशा वाले, शुक्ल करना, क्योंकि वहां शुक्ल लेशा ही होती है दसवें गुणस्थान में। भव्य, सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि, संगी और आहारक जीवों में जानना चाहिए, ये वहां पर ही सूक्ष्म, ये उसके अंत समय में ही जघन्य होगा, उसके अलावा सभी अजघन्य ही होंगे। विशेषार्थ, अनुभाग, कांडक, घात आदि क्रिया विशेष के कारण। आदि में और कौन से क्रिया विशेष होते हैं वो देखेंगे हम। तभी तो अनुभाग, कांडक, घात कहेंगे ना उसको। आदि में वो अनुसमयापवर्तन भी देखेंगे, प्रत्येक समय में अनुभाग का घटना लास्ट में जब होगा, इसलिए अंतिम समय लिया उसका। प्रत्येक समय में अनुभाग का गहन होना, अभी तो इतना ही समझना, अनुभाग, कांडक, घात होते हैं। आदि में जो कोई अन्य विशेष होते हैं उसके कारण क्षपक सूक्ष्म सांप्राय, साम्यराय दिख रहा है मुझे, सांप्राय के अंतिम समय में मौनी का सबसे जघन्य अनुभाग उपलब्ध होता है। इसलिए अंतिम समयवर्ती क्षपक सूक्ष्म सांप्रायिक जीव को, यहां भी करना सांप्राय, जघन्य अनुभाग का स्वामी कहा है। मूल में गिनाई गई अन्य मार्गणाओं में यह अवस्था संभव है। जिन जिन मार्गणाओं में यह दसवां गुणस्थान है उसको यहां लिया है, अतः उनका कथन ओघ के समान किया है। ये तो ओघ की बात हुई। ओघ में तो आसान है, दसवां गुणस्थान जहां संभव उसको बताए। आदेश में जिस मार्गणा का जो जघन्य होगा उसको लेना है। आदेश की अपेक्षा नारकियों में मौनी कर्म का जघन्य अनुभाग किसके होता है? हाँ, जो हत समुत्पत्तिक अनुभाग सत्कर्म वाला जीव असंगी पर्याय से आकर नारक पर्याय में उत्पन्न हुआ है, यानी उसके अनुभाग उसके योग्य जघन्य किया था, और ऐसा जो नारकी में आया है, वह जब तक पुनः बंध के द्वारा अनुभाग को नहीं बढ़ा लेता है तब तक उसके जघन्य अनुभाग विभक्ति होती है।
तो विग्रह गति में ही होगा ना?
हाँ, वो पूर्व के जैसा ही बंध करेगा। हाँ। इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जानना चाहिए। दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक मौन्य कर्म का जघन्य अनुभव किसके होता है? तो जो सम्यक दृष्टि उत्कृष्ट परिणामों से अनंतानुबंधी चतुष्क की विषय योजना कर चुका है उसके होता है। इसी प्रकार ज्योतिषी देवों में भी कथन करना चाहिए। किसको छोड़ा? भवनवासी और व्यंतर देवों में भी असंग उत्पन्न होते हैं, ज्योतिषियों में नहीं होते। तो ज्योतिषियों का भंग जो है वो दूसरे से लेकर सातवें पृथ्वी तक के नारकी के समान होगा। व्यंतर और भवनिक में असंगी जो अनुभाग कम लेकर यहाँ आया है, जब तक अधिक अनुभाग नहीं बांधता है तो पूर्व का अनुभाग बना रहता है। विशेषार्थ, सत्ता में स्थित अनुभाग का घात करने के बाद जो अनुभाग शेष बचता है उसे हतसमुत्पत्तिक अनुभाग सत्कर्म कहते। सत्कर्म है कर्म की सत्ता, हतसमुत्पत्ति के ने जिसने घात किया है, ऐसे अनुभाग वाले असंगी के नरक में उत्पन्न होने पर उस नारकी के शरीर ग्रहण करने के पूर्व तक, यानी कहां विग्रह में मुनि का जघन्य अनुभाग होता है, क्योंकि जब वो वैकिरिक मिश्र में आ जाता है तब उसके जो अंत कोड़ा कोड़ी निषेक को कहना है अनुभाग बंद उसके योग्य होगा, नारकी अपर्याप्त के योग्य होगा। इसलिए सामान्य से नरक में ऐसे जीव को जघन्य अनुभाग का स्वामी कहा। जब सामान्य की बात आई तब हर एक नरक में बात करेंगे तो पहले में तो घटित होगा, दूसरे से ये घटित नहीं होगा। प्रथम नरक में ऐसा जीव उत्पन्न होता है इसलिए उसका कथन सामान्य नारकियों के समान किया है, किंतु द्वितीय आदि नरकों में संगी के योग्य अनुभाग ही संभव है, इसलिए वहां जघन्य अनुभाग का स्वामित्व जिसने उत्कृष्ट परिणामों से अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना की है ऐसे जीव को दिया है। ज्योतिषी देवों में इसी प्रकार जघन्य स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उनका कथन द्वितीय आदि नरकों के नारकियों के समान किया है। अब ये नारकियों की बात हो गई। अब तिर्यंचों में मौन्य कर्म का जघन्य अनुभाग किसके होता है? तिर्यंचों में तो एक इंद्रियों से सब लेना है। जो हतसमुत्पत्तिक सत्कर्म वाला, यानी जिसने अनुभाग का घात किया है ऐसा सत्कर्म वाला सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव, जब तक जघन्य अनुभाग सत्कर्म के ऊपर बंध के द्वारा अनुभाग को नहीं बढ़ा लेता, जघन्य के साथ कायम तो नहीं रहेगा, वो अन्य भी बंध करेगा, तो उसने हतसमुत्पत्ति द्वारा जघन्य तो सत्कर्म तो जघन्य कर लिया है और अभी अधिक बंध नहीं किया है, अधिक अनुभाग की बात सोचना। हाँ, तो उसको तब तक जघन्य अनुभाग होता है। इसी प्रकार एकेंद्रिय, क्योंकि जब एकेंद्रिय जनरल कहेंगे तो उसमें भी सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त तो आ ही गए, तो जहां ये सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त होते हैं ऐसी सभी मार्गणाएं लेंगे। एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, पर्याप्त को नहीं लिया, वनस्पति कायिक निगो दिया, निगा दिया हुआ निगो दिया, यानी निगोदी में अपर्याप्त लेने, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त, वो भी सूक्ष्म एकेंद्रिय है ना, सूक्ष्म वनस्पति। ये सूक्ष्म वनस्पति बादर होती है क्या? सॉरी, सूक्ष्म वनस्पति निगोद वाले होती है, साधारण होते के प्रत्येक होते, मुझे पूछना था।
साधारण
प्रत्येक नहीं होते, साधारण ही होते हैं सूक्ष्म में। सूक्ष्म निगोदिया और उनके अपर्याप्त, हाँ निगोदिया, हाँ सामान्य कथन होगा तो फिर भी उनमें कथन जो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त की बात उनकी अपेक्षा कथन होगा। देखो ये जितने भेद करेंगे ना उसके, जैसे हम कर्म की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति किसके होती है तो हमने कहे मोहनीय की होती है, मोहनीय की होती है। अब मोहनीय में अगर हमको भेद करने हैं हम कहेंगे दर्शन मोहनीय की होती है मैक्सिमम स्थिति,
तो यहाँ पे
मैक्सिमम स्थिति, और उसमें किसके होते तो मिथ्यात्व की होती है। ये जैसा है ना वही कथन मोहनीय के लिए जो अब हुआ, वही दर्शन मोहनीय के लिए और वही मिथ्यात्व प्रकृति के लिए। वो उत्कृष्ट की बात कर रहे थे स्थिति की अपेक्षा। अब यहाँ कह रहे हैं जो बात निगोदियों में घटित होती है, निगोदियों में भी कौन से निगोदियों में होगी, सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्तक में होगी। तो वो सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्तक सभी निगोदियों में इंक्लूडेड है। तो अगर हम कहेंगे निगोद में ये बात घटित होती है, हाँ होती है। कहेंगे सूक्ष्म निगोद में घटित होती है, हाँ होती है। और सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त में होती है, होती है, पर्याप्त में नहीं होती। औदारिक मिश्र का योगी, कुमति ज्ञानी, कुशुत ज्ञानी, असंयत, तीनों अशुभ लेशा वाले, क्योंकि सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त को या सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त को, ये तीन अशुभ लेशा वाले ही होते हैं। अभव्य मिथ्या दृष्टि और असंगी में जानना चाहिए विशेषार्थ। पंचेंद्रिय तिर्यंचों में मोहनीय कर्म, हाँ
विशेषार्थ,
विशेषार्थ मैं नीचे चली गई क्या, हाँ विशेषार्थ, विशेषार्थ को तो पढ़ा, आगे का नीचे चली गई। हत समुत्पत्तिक सत्कर्म वाले सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तक के ये सब मार्गणाएं संभव है। कहा ना ये मार्गणाओं के नाम तो अलग अलग है परंतु इन सब में सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तक होते हैं, इसलिए इनमें जघन्य अनुभाग का स्वामित्व तिर्यंचों के समान कहा है। यही रुकेंगे अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो नो। अश्विन में
नमोरियंताणं नमोचित्ताणं नमायजनं नमोवचनं नमोलोयचत्वसावनं नमोरियंताणं नमोचित्ताणं नमो